तफसीर, सूरत यासीन मक्की सूरत है। इसके 5 रुकू, 83 आयात, 83 आयात, अल्फाज और कलिमात की तादाद 729, 729, जबकि हुरूफ जो है वो 3000 बताए जाते हैं, 3000। इस सूरत का मौजू और मजमून जो है खास तौर पर जो है वो कुफारे कुरैश को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत पर ईमान न लाने पर जो है वो जो ईमान नहीं ला रहे थे और जुल्म कर रहे थे तो उससे उस पे उनको डराया गया है। और डराते वक्त तीन बातें जो हैं, तीन बातें खास तौर पे सामने रखी गई हैं, यानी तौहीद पर दलाइल दिए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आखिरत के लिए दलाइल है इंसान के वजूद से, कायनात से, अकल से। और तीसरा जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के लिए। सूरत यासीन की अहमियत और फजीलत जो है, जैसे इमाम अहमद, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, तबरानी ने माकिल बिन यसार से रवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन कल्बुल कुरान, ये सूरत कुरान का दिल है। ऐसे ही जैसे सूरत फातिहा के लिए आपने पढ़ा था उम्मुल कुरान, कि कुरान मजीद की पूरी तालीमात का खुलासा, और यासीन कुरान का धड़कता हुआ दिल, क्योंकि ये कुरान की दावत को निहायत पुरजोर तरीके से पेश करती है, जिससे जमूर टूटता है और रूह में हरकत पैदा होती है। और आप देखें कि कुरान की जो दावत है, अगर आप उसका खुलासा कहें तो तौहीद, आखिरत और रिसालत। और फिर दो ग्रोह हैं, एक ईमान लाने वालों का और एक इनकार करने वालों का। इसी तरह माकिल बिन यसार से इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रवायत किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकराउ सूरह यासीन अला मौताकुम, अपने मरने वालों पर सूरत यासीन जो है वो पढ़ा करो। और इसके माने ये है कि अगर कोई शख्स मर रहा हो और उसके सामने अगर सूरत यासीन पढ़ी जाए ताकि इस्लामी अकायद उसके ताजा हो जाएं, उसके सामने आखिरत का नक्शा जो है वो आए और उसे पता चले कि दुनिया की जिंदगी से गुजर कर आगे किन मंजिलों से सबका पेश आने वाला है। और बेहतर है कि अगर कोई अरबी नहीं समझता तो फिर उसको तर्जमा भी सुनाया जाए ताकि उसका तस्कीर का जो है वो हक अदा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि सूरत यासीन जो है इसकी जैसे फजीलत के बारे में जो ये अहादीस आपके सामने पेश की हैं, तो जैसे ये वाली के ये कुरान का दिल है, और इसी तरह अभी दूसरी मैंने आपको सुनाई कि जो मरने वाले के पास पढ़ी जाए, तो एक राय ये भी है, बाज मुहद्दसीन कहते हैं कि ये अहादीस जो हैं ये ज़ईफ है, ये कमजोर हैं, और बाज कहते हैं कि ये मौजू हैं। तो बहरहाल अक्सर तफसीरों की किताबों में ये अहादीस जो हैं ये दर्ज हैं, और मैंने भी आपके सामने रखी हैं, और इसके साथ जो एक राय है वो भी आपके सामने रखी है ताकि आपके इल्म में रहे। और इस तारुफ के साथ जो है मैं सूरत यासीन को शुरू करती हूँ। और आप में से कितनी बहनों को सूरत यासीन आती है? बहुत से लोगों को माशाल्लाह सूरत यासीन आती है। बाज लोगों ने बचपन में याद की होगी, और बाज लोग जो है रोजाना पढ़ते हैं, उनकी रूटीन है, और क्योंकि जो चीज रोज पढ़ी जाती है वो भी याद हो जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, और माशाल्लाह अक्सर बहनों को ही आती है। अच्छा, आयत नंबर 1 से लेकर 12 तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जो है उसकी सदाकत, उसका इस्बात किया गया है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जो है उसकी तायीद और तस्दीक की गई है, और उसके लिए कुरान मजीद जो है उसकी गवाही दी गई है कि कुरान जैसी किताब जो है उसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई, और ये बहुत बड़ी गवाही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के लिए कुरान की कसम खाना, क्यों कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आप लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ दावत दे रहे हैं। और कुरान किसने नाजिल किया? अल्लाह ताला ने नाजिल किया। और आप कौन हैं? आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। यासीन, यासीन जो है इब्ने अब्बास, इकरमा, दहाक, हसन बसरी, सुफयान बिन आइनिया, तो वो कहते हैं कि इसके मानी है ए इंसान या ए शख्स। बाज लोगों ने इसका तर्जमा या सैयद का भी किया है, और बहरहाल मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है। और ये बात आपको पता ही है कि ये हरूफ मुकत्तात में से है और इसके मानी अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बाज मुफस्सरीन ने ये मानी बयान किए हैं। अच्छा जो है वो ये जो आयत नंबर 2 है और आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4, यहाँ पे तीन ताकीदें हैं। पहली ताकीद क्या है कि वल कुरान अल हकीम, तो वो जो है ये और के मानी नहीं दे रहा बल्कि कसम के लिए है, कसम है कुरान हकीम की। क्या मानी है कि पहले मक्का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर रहे थे, और अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जो है उसकी ताईद के लिए, उसकी ताकीद के लिए और शिद्दत के साथ आपकी नबुवत जो है उसको साबित करने के लिए कसम खाई है कुरान की कि वल कुरान अल हकीम, कसम है कुरान हकीम की। तो कसम कुरान हकीम की खाई, यानी अल हकीम, हिकमत वाला कुरान। तो वो कुरान जो हिकमत से लबरेज है, भरा हुआ है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान जैसा हकीमाना कलाम पेश करना, ये इस बात का सबूत है। आयत नंबर 3, इन्नका लमिनल मुरसलीन, के तुम यकीनन रसूलों में से हो। तो ये दूसरी ताकीद है कि कोई इंसान नहीं ऐसा कलाम पेश कर सकता। तो यानी ऐसा नहीं कि सीख कर घड़ कर इधर से उधर से कुछ पेश कर दिया जाए, नहीं, बल्कि क्या है कि हिकमत वाले कुरान की कसम कि बेशक आप जो है वो रसूलों में से एक हैं। तो आप देखें कि नंबर 1 वो है कसम के लिए, और दूसरा कुरान की गवाही, और कुरान क्या है, मिरिकल ऑफ मिरिकल्स, और ये आपकी नबुवत की गवाही के लिए ये बात काफी है। तो इन्ना भी ताकीद है और लाम भी ताकीद है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, क्या आप रसूलों में से हैं यकीनन। नंबर 3, तीसरी ताकीद क्या है जो आयत नंबर 4 में है, अला सिराते मुस्तकीम, कि आप सीधे रास्ते पर हैं। और अहले मक्का क्या कह रहे थे कि अहले मक्का जो थे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आप जो हैं वो नाउज बिल्ला गुमराह हो गए हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, तुम सीधे रास्ते पर हो, और सिराते मुस्तकीम से मुराद जो है वो हदायत का रास्ता है कि तुम सीधे रास्ते पर हो। तो इसके मानी है कि अल्लाह के नबी जो दावत पेश कर रहे थे, जो लोगों को सिराते मुस्तकीम की दावत दे रहे थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही सीधा रास्ता है। लोगों को टेढ़ नजर आती है लेकिन इसमें टेढ़ नहीं है। तंजील अल अजीज रहीम। और अब यहाँ पे जो है कुरान मजीद जो है वो उसके नाजिल करने वाले की दो सिफात को बयान किया गया है। तंजील, तंजील जो है ये पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, बाबे तफील के वजन पर है ये, और इसके मानी होते हैं कि तंजील के कि किसी चीज को दर्जा ब दर्जा निहायत एहतमाम से उतारना, जैसे एहतमाम के साथ, तदरीज के साथ, जरूरियात जिंदगी के मुताबिक, जैसे जैसे हालात पेश आते गए वैसे वैसे कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल किया। और अल्लाह ताला की दो सिफात, अल अजीज और अर रहीम। अजीज के मानी है गालिब, जबरदस्त, और रहीम के मानी है रहम करने वाला। अब आप देखें कि ये दो सिफात का क्यों जिक्र किया। अजीज की सिफ जो है ये डराने के लिए है, और रहीम की सिफ जो है ये खुशखबरी के लिए है। तो अल अजीज किन लोगों के लिए है जो इनकार कर रहे हैं, और खुशखबरी किन लोगों के लिए है जो कुरान मजीद की कदर कर रहे हैं, जो रसूल की कदर कर रहे हैं। तंजील अल अजीज रहीम। तो अहले मक्का के लिए, झुटलाने वालों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं गालिब हूं, मैं जबरदस्त, तुम खूब पकड़ूंगा, और मैं जब पकड़ूंगा तो मेरी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। और अर रहीम, और उसके साथ ही ये मेरा रहम है कि मैंने किताब नाजिल की, अर रहमान अल्लमल कुरान, और ये मेरा रहम है कि मैंने जो है वो रसूल बनाकर भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये दो सिफात का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि कुरान मजीद नाजिल किया और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ये तुनजिरा ताकि आप डराएं। अब कुरान मजीद को नाजिल करने का मकसद बताया जा रहा है कि क्यों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा गया। आपको याद होगा पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि मेरी कौम में, मेरी उम्मत में एक रसूल भेज जो लोगों को जो है वो कुरान पढ़कर सुनाए, तेरा पैगाम पढ़कर सुनाए। तो कहा ये तुन जिरा ताकि तुम खबरदार कर दो कौमन एक ऐसी कौम को, मा उन जिरा आबा अहुम फहुम गाफिलून, कि जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो है ये बात बताई जा रही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो रसूल बनाकर भेजने का मकसद ये है कि आप अरब के लोगों को डराएं कि उनके पास जो है उनके अबाओ अजदाद के पास कोई रसूल नहीं आया था और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। यानी इसके मानी है कि बाप दादा से मुराद जमाने करीब के बाप दादा। जमाने बईद में तो क्या था, बहुत से नबी आए थे ना, तो कहा कि जो है वो काफी अरसे से जमाने करीब में कोई नबी नहीं आया था, जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद आपकी बेसत तक कोई नबी अहले मक्का की हदायत के लिए नहीं आया था, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया ताकि आप लोगों को जो है वो डराएं। तो गफलत जो है इससे बेदार करने का जरिया और तरीका क्या है, दो चीजें। एक तो रसूल की अताअत करना, रसूल की पैरवी करना और सीरत का मताला करना, और नंबर दो जो है वो कुरान मजीद से दोस्ती करना। तो कुरान और सुन्नत जो है उससे मुताबकत इख्तियार करना। आयत नंबर 7, लकद हक्कल कौलू अला अक्सरहिम फहुम ला युमिनून। अब यहाँ पे आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये जो इनकार करने वाले हैं इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो फैसला अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। अक्सर लोग जो हैं जो आपकी रिसालत पर ईमान नहीं ला रहे, कुरान की तस्दीक नहीं कर रहे, तो आप गम ना करें, आप अफसोस ना करें, आप अपनी जान को जो है वो हिलकान ना करें। लकद हक्कल कौलू अला अक्सरहिम, के इनमें से अक्सर जो है क्या है कि ये हदायत के रास्ते पे नहीं आएंगे, इस बात का फैसला हो चुका है, इनके लिए अजाब का फैसला हो चुका है। क्यों? फहुम ला युमिनून, के ये ईमान नहीं ला रहे। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये इन लोगों का जिक्र है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुकाबले में हट धर्मी दिखा रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह जो है वो उन्हें दावत दे रहे थे मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, और उतना ज्यादा जो है वो इनकार कर रहे थे, और मुराद है इससे अबू जहल, उतबा, शैबा वगैरह। आयत नंबर 8, सूरत यासीन आयत नंबर 8। आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुतकब्बिर हैं उनके इस्तकबार की मंजर कशी की है, जो इनकार करने वाले हैं और इनकार करके वो किबर की हदों को छू रहे हैं, उनकी मंजर कशी की है कि ईमान से दूरी की वजह से, रसूल और कुरान का इनकार करने की वजह से इनका क्या हाल हो गया है। इन्नमा जअलना फी आनाकहिम अगलालन, कि बेशक हमने इनकी गर्दनों में जो है वो अगलाल जो है वो डाल दिए हैं। तो आनाक उनुक वाहिद है और आनाक जमा है, तो हमने डाल दिए हैं इनकी गर्दनों में अगलालन, तौक जंजीरों को कहते हैं ना, गिल से है ये। फाहिया इलल अजकानी, और ये जो है ये थोड़ियों तक है, अजकान जाल काफ नून इसका रूट है और इसके मानी है जकन थोड़ी को कहते हैं, अजकान जो है वो जमा है। तो ये जो जंजीरें इनकी गर्दनों में डाली गई हैं, जो तौक डाले गए हैं, और ये जो है ये गर्दन से लेकर इनकी थोड़ियों तक जकड़े गए हैं, फहुम मुकमहून, बस ये लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सर उठाए खड़े हैं, फहुम मुकमहून। अब आप देखें कि यहां पर ईमान न लाने वालों की और किबर करने वालों की मंजर कशी के लिए, और आप इसको यूं समझें कि आपको ये पता चल गया कि अनाक तो गर्दनों को कहते हैं, अगलाल जंजीरों को, तौक को कहते हैं, अजकान जो है वो ठोड़ियों को कहते हैं, मुकमाहून जो है काफ मीम हा वो घ्यू गंदुम वो गंदुम और जौ वगैरह जो पकने से काटने तक बाली में रखा जाता है। अब आप देखें कि गंदम का दाना हो या जौ वगैरह हो ना, जिससे सत्तू बनता है या आटा बनता है, अगर वो जो है वो दाना जो है वो बाली के अंदर हो, सत्तू है या जौ है, तो अगर बाली के अंदर है और आप चाहती हैं कि आप उसको खाएं, तो उसका खाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? कि फांकने के वक्त गर्दन ऊपर को उठानी पड़ती है ना, ताकि ऐसे मुट्ठी भर जो है वो मुंह के अंदर जो है वो फेंका जाए। तो जब गर्दन ऊपर को उठाई जाती है तो क्या होता है कि सर पीछे की जाने चला जाता है ना, और गर्दन एक खास हद तक होती है कि ना उसे नीचे हो सकती है ना ऊपर, वरना वो जो ऐसी गंदम और ऐसे सत्तू जो उसके अंदर होते हैं बाली के अंदर, तो वो मुंह के अंदर जो है वो नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो है ये काफ मीम हा के मानी तो ये हैं, और मुकमह मुकमहून है ना, तो मुकमह वाहिद है और मुकमहून जमा है। मुफस्सरीन कहते हैं कि घोड़े की बागे जब खींच ली जाती हैं तो वो भी सर उठाए हुए होता है, और कहते हैं मुकमहून उस ऊंट को कहते हैं जिसका सर पीछे की जानिब इस तरह बांध दिया गया हो कि इसकी गर्दन एक खास हद से ना नीचे हो सके ना ऊपर। अब आप देखें कि अगर आप इसी से सोचें, किसी शख्स की गर्दन में लोहे की जंजीर डाल दी जाए, और अब लोहे की जब जंजीर डाल दी जाएगी तो फिर वो अपना सर ना नीचे कर सकता है ना ऊपर, बल्कि उसकी जो गर्दन है एक खास जाविये पर आकर जो है वो अकड़ जाएगी, तन जाएगी। तो ये है मुस्तकबरीन की मंजरकशी के ऐसे अपनी यानी सरों को अकड़ा कर खड़े हुए हैं जैसे कि इनकी गर्दनों के अंदर जंजीरें हों, जैसे कि इनकी गर्दनों में मेखें ठोक दी गई हों, तौक हो, और जिसकी वजह से जो है ये ठोड़ी ऊपर की हुई है और गर्दन को अकड़ाया हुआ है और दावत के लिए अपने सरों को झुकाते ही नहीं। बड़ा जबरदस्त यहाँ पर जो है वो अंदाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार किया है, और जिसमें इनकार करने वालों की जिद, हठधर्मी, किब्र, इनकार जो है वो उसकी मंजरकशी की है कि कैसे ये लोग हैं कि तौहीद की आयात, आखिरत की आयात, रसूल का पैगाम जो है उससे बेनियाजी दिखा रहे हैं। फिर इसी बात को आयत नंबर 9 में बयान किया, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग्शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, फरमाया और हमने बना दिए हैं इनके हाथों के आगे सद्दन दीवार, सीन दाल दाल, पत्थरों के साथ सुराख को भर देना, आड़ बनाना। पीछे आपने सूरत कहफ में सद्दा पढ़ा था ना, सद्दे ज़ुलकरनैन और सद्दे मआरिब भी आपने पढ़ा था, ये मलका सबा के बारे में जब पढ़ा कि उन्होंने भी एक कैसा उन्होंने आपाशी का जो निजाम कायम किया था। तो बहरहाल सद का मतलब होता है कि दीवार बनाना, रोक पैदा करना, पत्थरों के साथ रखनों को भर देना। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन, हमने एक दीवार इनके आगे खड़ी की है, व मिन खल्फिहिम सद्दन और एक दीवार इनके पीछे खड़ी की है। तो सद्दन के मानी क्या है, दीवार के। फअग्शयनाहुम, फिर इनको हमने ढांप दिया है, फहुम ला युबसिरून, अब इन्हें कुछ भी सूझता नहीं है। तो पीछे आपने तौक का पढ़ा और वो निशानी थी तकबर की, जिद की, हठधर्मी की। अब ये दीवार आगे पीछे खड़ा करना, ये भी हठधर्मी का नतीजा है, तकबर का नतीजा है। जैसे दीवार, अगर आप देखें कि आप खड़ी हुई हैं और आपके सामने दीवार हो तो आपको आगे कुछ नजर नहीं आएगा ना, और आप सोचती है चलो मैं पीछे मुड़ती हूँ, पीछे देखती है तो पीछे भी दीवार है तो आपको पीछे भी कुछ नजर नहीं आएगा। तो आगे पीछे दीवार खड़ी करना इसके मानिए इतने हठधर्म हैं, इतने मुतकब्बिर हैं कि ना पिछली पिछली तारीख से कोई सबक लेते हैं और ना ही फ्यूचर जो है उसके नतीजे से कभी गौर करते हैं। तासुब है इनके अंदर, किबर पाया जाता है, जिद, हठधर्मी के गौर व फिक्र करना ही नहीं चाहते। तो ये दीवार से मुराद जो है ये जिद, हठधर्मी, तकबुर और असबियत की दीवार है, उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए इन्हें हदायत का रास्ता, हदायत का पैगाम जो है वो पता ही नहीं चल रहा। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, तसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, के जब किसी की ऐसी हालत हो तो वह सवाउन अलैहिम तो बराबर है इन पर, अनजरता हूं खा आप इनको डराएं, अमलम तुनजिरहुम या आप इनको ना डराएं, ला युमिनून ये ईमान नहीं लाएंगे। अब आप देखें कि अनजरता हूं का रूट क्या है, नजीर, अनजरता हूं का रूट क्या है, नून जाल रा, और नजीर डराने वाले को कहते हैं, और तुनजिर का रूट भी नून जाल रा है। तो आप खा डराएं या ना डराएं ये ईमान लाने वाले नहीं है। तो अब यहां पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप जो है हर धर्मों को छोड़ दें, ये मुतकब्बिर जो है इनको छोड़ दें, इन पर अपना वक्त न जाया करें, आप छांट छांट कर नेक लोगों को मुंतखिब करें, सलीमुल फितरत लोगों को, आप उन लोगों के पास जाएं जो समझना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो कि मुतकब्बिर हैं इन पर अपना वक्त जाया ना करें। और आप देखें कि यहां पर जो है दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, एक दाई जो है उसको बताया जा रहा है कि उसी को समझाना फायदा दे सकता है जो समझना चाहता है, और जो समझना नहीं चाहता, जो खुद अपनी हदायत ना चाहे, तो पैगंबर भी उसको हदायत नहीं दे सकते। आप देख लें कि नूह के घर, नूह अलैहि सलाम के घर जो है फिर काफिर बेटा पैदा हो जाता है, और जब समझने की बात है तो जो है वो आजर के घर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा होते हैं। आयत नंबर 11, इन्नमा तुनजिरु, बेशक आप डरा सकते हैं, यानी आप उस शख्स को डरा सकते हैं, मन उसको जो जिसके अंदर दो सिफात पाई जाती है, नंबर एक इत्तबा जो पैरवी करे, अज़िक्रा नसीहत की, तो आप किसको डराएंगे, आप उसी पर तालीम और तस्कीर कर सकते हैं जो तुम्हारी नसीहत को सुनना चाहे, मन इत्तबा ज़िक्रा जो नसीहत की पैरवी करे। नंबर दो वख़शी अर्रहमान बिल गैब, और बेदेखे खुदाए रहमान से डरे। तो अब आप देखेंगे खशियत जो है वो दिल का झुकना और दिल का डर और दिल का खौफ, और खशियत यानी ऐसा डर कि जिसका असर जिस्म के अज़ा पर जो है वो महसूस होने लगे। तो अब यहां पर जो है वो पहली सिफ्त बताई जा रही है कि आप जो है बेदेखे रहमान से डरने वाले को नसीहत कर सकते हैं। तो ईमान वो मुतबिर है जो कानों, आंखों, अकल और दिल की सलाहियतों से फायदा उठाकर जो है वो लाया जाए, ना कि हकायक को आंखों से देखकर। तो जो आंखों से देखकर ईमान लाना चाहते हैं इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द करो। तो आप किनको डरा सकते हैं, जो जिक्र सुनना चाहता है, जो नसीहत को कबूल करना चाहता है, और जो बेदेखे रहमान से डरता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर दो खुशखबरियां हैं, नंबर एक फबशिर हु बिमग़फिरतिन, बस आप इन्हें खुशखबरी दे दीजिए बख्शिश की, नंबर दो व अजरिन करीम, और अजरे करीम की। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए जो है वो दो इनामात हैं, दो खुशखबरियां हैं, और इसमें पहली खुशखबरी जो है वो क्या है कि ऐसे लोगों की अगर कोई उनसे गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, तो अल्लाह ताला उसको जो है वो माफ कर देगा। क्यों? वो समझना चाहता है और इंसान होने के नाते उससे कुछ खता हो गई है। और दूसरा जो है बताया जा रहा है कि अजरिन करीम बड़ा अजर है, तो ये जो है ये जो नेक लोग हैं इनके लिए खुशखबरी है कि नेकी करने की वजह से अल्लाह ताला जो है ऐसी अजर इनको देंगे, ऐसी जन्नत उन्हें देंगे, क्योंकि ये बेदेखे रहमान से डरते हैं। ना इन्होंने जन्नत देखी है, ना इन्होंने जहन्नुम देखी है, इन्होंने अल्लाह को देखा नहीं पर अल्लाह को अल्लाह की निशानियों से पहचाना है, तो इनके लिए बड़े इनामात हैं। और प्यारी बहनों, हमारे आज के सबक की जो आखिरी आयत है, आयत नंबर 12, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी अहम बात रखी है। और इस आयत में कयामत के दिन की याद दहानी कराई है। मुनकरीन के दो शुभात जो हैं उनको दूर किया है। मुनकरीन ये समझते थे ना कि मरने के बाद जिंदा नहीं होंगे, और दूसरा वो ये समझते थे जो चाहे करे कोई पूछ नहीं होनी। कहा इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम। पहली बात कि हम यकीनन एक दिन मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, अल मौता, और वो कौन सा दिन होगा? वो होगा कयामत का दिन। तो कैसे तुमने समझा कि मरने के बाद जिंदा नहीं होगे, तुम्हें जरूर जिंदा किया जाएगा। नंबर दो, व नक्तुबु मा कद्दमू, और हम सब लिखते जा रहे हैं, मकदमू जो कुछ इन्होंने जो है वो आगे भेजा, वह आसार हूं और जो आसार इन्होंने पीछे छोड़े हैं, वकुल्ला शैइन और हर चीज आसवैनाहू हमने उसको गिन रखा है, फी इमाम मुबीन खुली रोशन किताब में। अब आप देखें कि इस आयत में मुश्किल अल्फाज क्या है। माशाल्लाह आपको सभी अल्फाज जो हैं इसके आते ही हैं कि नोही हाया या जिंदगी के लिए होता है, और नोही नून के मानी हम जिंदा करते हैं, करते हैं और करेंगे, फेल मजारे है। अलमौता मौत से है और मुर्दे को कहते हैं, और कतबा लिखना, नक्तबू फिर नून हम के लिए आया है, हम लिखते हैं लिखेंगे, कदमू काफ दाल मीम कदम आगे भेजना, आप जब कदम बढ़ाती हैं तो आगे बढ़ती हैं ना। वह आसार हम, हमजा सा रा इसका रूट है और इसके मानी है निशान, आसार तो इसके मानी है आसार के। और आसवई ना हो या पहले भी पढ़ चुकी हैं, और हा स्वाद वो हा स्वाद या पहले मक्का के यहाँ कोई कैलकुलेटर और लैपटॉप या कंप्यूटर और इस तरह की चीजें तो नहीं होती थी, हिसाब किताब का बहुत ऐसा निजाम, तो वो पत्थर फेंकते थे और किंकरियां मार फेंकते थे और गिनते जाते थे चीज को। तो इस तरह आसा का लफ्ज जो है एक्यूरेट काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सही हिसाब किताब। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने हर बात को, हर अमल को, हर चीज को जो है वो लिख रखा है, दर्ज कर रखा है, फी इमाम मुबीन। और इमाम का जो लफ्ज है इसलिए लीडर को भी कहते हैं, रहनुमा को, हादी को भी कहते हैं, और दूसरे इसके मानी जो है वो जैसे लोहे महफूज के भी हैं, क्योंकि लोहे महफूज ऐसी किताब है जिसमें हर अमल को लिखा हुआ है, और इससे मुराद यानी वो लोहे महफूज, वो मरकजी किताब जिसमें लोगों के अमाल लिखे हुए हैं। तो इसी तरह ये अल्लाह ताला नामा अमाल के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि नामा अमाल, तो बात एक ही है। आइए इस आयत को समझते हैं कि इससे क्या मुराद है। ये जो खास तौर पर कि जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और लोगों ने जो कुछ कर रखा है उसको हम लिखते जा रहे हैं, इसके क्या मानी है? मा कद्दमू वो आसार हूं। मुफस्सरीन कहते हैं कि मां कद्दमू से मुराद वो अमाल है जो इंसान खुद अपनी जिंदगी में करता है, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम वो सब कुछ लिखते जा रहे हैं जो इंसान ने आगे भेजा है, मां कद्दमू के जो कुछ उसने आगे भेजा। तो जो अमल उसने आगे भेजे अच्छे अमल थे या बुरे थे? तो ऐसा नहीं है कि अमल इंसान करता है तो खत्म हो जाते हैं, नहीं, बल्कि वो सामान बनकर आगे चले जाते हैं, अगली जिंदगी में फिर साहब का पेश आएगा। अच्छे अमल हैं तो जन्नत के बागो बहार बन जाएंगे, जन्नत की नेमतें मिलेंगी, बुरे अमल हैं तो जहन्नुम के अंगारे बनेंगे। तो यहां पर जो है इसके मानी है कि इंसान जो है वो आगे क्या भेजता है। तो आप सोचें कि मैं आगे क्या भेज रही हूं, कैसे अमाल है जो मैं क्या आगे भेज रही हूं। और आप देखें कि इससे ये बात पता चलती है कि जो अमाल भी आप करती हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने किया और साथ ही दुनिया में वो खत्म हो गया, बल्कि जो है वो आपकी नीयत, आपका ख्याल, आपका इरादा, आपके अमाल अच्छे बुरे सारे जो हैं उनकी एक मूवी बन रही है, उनकी मूवी बन रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब देखें डिजिटल रिकॉर्डर छोटी सी उसमें चिप होती है और कई घंटे और कई दिन की रिकॉर्डिंग उसके अंदर हो सकती है। तो और फिर ये कि सेम रिकॉर्डिंग को आप सुन लेते हैं, इसी तरह मूवीज जो बनती हैं तो क्या होता है कि एक्टिंग की भी होती है ना, और लोग फिर बाद में उसको देखते हैं कि ये हमने क्या किया है। ये आयत ये बता रही है कि इंसान अपनी अपने मुंह से जो आवाज निकालता है, अपने अज़ा से जो अमल करता है, वो सब महफूज हो रहे हैं, और वो जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये नहीं है कि इंसान चाहे तो उनकी रिकॉर्डिंग होगी, नहीं चाहे तो नहीं, हर सूरत रिकॉर्डिंग होगी। और जदीद तहकीक ने तो इसको साबित भी कर दिया है कि इंसान अपने मुंह से जो आवाज निकालता है तो वो जो है वो वेव्स जो है वो उसकी शक्ल में वो दुनिया में मौजूद होता है। और इसी वजह से ये जो रिकॉर्डिंग और फिल्में और ये सारी चीजें जो है वो बनती हैं। तो ये बात जो है ये बहुत ही अहम बात है जो इतना अरसा पहले अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान में फरमाई। वह आसारहुम, आसारहुम के क्या मानी है? आसारहुम इसके एक मानी है अमाल के समरात और नताइज, यानी अमल करने वाला जो अमल करता है तो उसके समरात और नतायज क्या हैं? वो अमाल जिनके अमली नमूने अच्छे या बुरे इंसान दुनिया में छोड़ देता है। मसलन आप देखें, आप चलती हैं तो आपके कदमों के निशान होते हैं, खासतौर पर आप देखें बर्फ बहुत गिरी हुई हो और बर्फ के दिनों में कई कई इंची स्नो होती है और सफेद चांदनी की तरह ना, सफेद चांदनी की तरह हर तरफ सफेदी बिखरी हुई होती है, और स्नो में लोग आराम से घर में दबक कर बैठ जाते हैं। और कुरान क्लास के तालिबे इल्म आप लोग क्या करते हैं कि आप बर्फ के मौसम में आप निकलते हैं घर से, अपने बैग को कुरान को उठाकर आप मस्जिद पहुंचते हैं और आपके कदमों के निशान पड़े हुए होते हैं ना मस्जिद में, मस्जिद तक पहुंचने के लिए। तो जहां जहां आप कदम रखती हैं वहां वहां निशान होता है। और बर्फ ना भी हो तो, यानी मैं बर्फ की मिसाल दे रही हूँ कि मुश्किलात में आपने नेकी की, और वैसे भी जो है वो बाकायदगी के साथ अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करना, मशक्कत करना। आप रात की ये इवनिंग क्लास है तो आप जाग रही हैं, बहुत नींद आ रही है, बाज़ुकात खाना नहीं खाया हुआ होता, बाज़ुकात इधर उधर की और बहुत सी मसरूफियात होती हैं, लेकिन सबसे हटकर सबसे कटकर आप जो अमल कर रही हैं, जो अच्छाई कर रही हैं, जो अच्छे अमल कर रही हैं, तो वो क्या है कि वो आसार हैं। तो आसार से मुराद अमाल के जो है वो क्या है, समरात है, नताइज हैं, अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। और इसके लिए यानी इससे मुराद है कि इंसान जो है अपने अमाल के अच्छे और बुरे जो नताइज और जो निशानियां पीछे छोड़ जाता है मरने के बाद, अपने वालों पीछे वालों के लिए छोड़ जाता है। जैसे हदीस में आता है जिसने इस्लाम में कोई नेक तरीका जारी किया इसके लिए इसका अजर भी है और इसका भी जो इसके बाद इस पर अमल करेगा बगैर इसके कि इनके अजर में कोई कमी हो। और जिसने कोई बुरा तरीका जारी किया जिस पर इसके अपने गुनाह का भी बोझ होगा और उसका भी जो इसके बाद इस पर अमल करेगा बगैर इसके कि इनमें से किसी के बोझ में कमी हो। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। तो अब आप देखें कि अब तक की जिंदगी में आपकी जितनी भी उम्र है, 20, 30, 50, 60, 70, जो भी आपकी उम्र है, अब तक की जिंदगी में आपने कौन से ऐसे काम किए हैं अच्छे काम किए हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, अपनी फैमिली के अंदर, अपने बच्चे, अपने दोस्त के, आपकी सोबत की वजह से उन्होंने नेकियां करने शुरू कर दी, तो ये आपके नामायमाल में, ये आपका बैंक बैलेंस है जो जमा हो रहा है। और एट द सेम टाइम आप ये सोचें कि आपने कौन से ऐसे बुरे काम किए हैं जो आपकी देखा देखी और लोग भी करने लगे। पीयर प्रेशर होता है ना, जैसे सेब को देखकर सेब रंग पकड़ता है ना, एक शख्स जो कर रहा होता है दूसरा भी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, और बहुत से लोग कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। अच्छा कि कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा और भाई महफिल में बैठे हैं और नाच गाना और कुछ हो रहा है, कोई भी नहीं पढ़ रहा है ना, या नाच गाने की महफिल या बुराई की महफिल या गीबत चुगली हो रही है, तो आप जो है क्या करती हैं, कैसे आप जो है वो एक्ट या रिएक्ट करती हैं, तो आपने कितने बुरे तरीके जो है वो जारी किए और कितने नेकी के तरीके जारी किए, तो ये बात बहुत अहम है। इसी तरह एक हदीस है, जब इंसान मर जाता है इसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है सवाए तीन चीजों के, नंबर एक एक इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं, नंबर दो नेक औलाद जो मरने वाले के लिए दुआ करें, नंबर तीन सदका जारिया जिससे इसके मरने के बाद लोग फैज याब हों। तो ये है अमल के आसार। आसार के मैंने आपको बताया दो मानी है, अभी हम पहला देख रहे हैं कि अमाल के समरात और नताएज। अब आप देखें कि आप ऐसा इल्म छोड़ रही हैं जो जिससे लोग फायदा उठाएंगे, जिसमें कुरान है, जिसमें सुन्नत है, और इससे जो है वो मुराद क्या है कि नेकी के कामों को जो है वो रिवाज देना। दूसरा है नेक औलाद, तो उसमें ये कि आप अपनी औलाद को नेक बनाने के लिए, उसकी तालीम और तरबियत के लिए आप कितनी फिक्र करती हैं, आप कितनी दुआएं करती हैं और कितनी मेहनत मशक्कत करती हैं। और फिर तीसरा है सदका जारिया, और इससे मुराद जो है वो कुरान का इल्म हो सकता है, सीडी है, किसिट्स हैं, उनको फैलाना, आम करना। और बाज़ुकात जैसे आपने सीडी के सेट ली और आपके पास $50 हैं और आप कहती हैं मैं इसको सदका जारिया बनाना चाहती हूँ, तो आप उससे सीडी के सेट लेकर कुरान की आप औरों को देती हैं, फिर जैसे अपनी आप एक लाइब्रेरी बना लें और सीडी के सेट की, और फिर उसको आप फैलाती चली जाती हैं, एक ने सुनी फिर दूसरे फिर तीसरे, क्योंकि बाज़ुकात बाज़ लोग सुनना चाहते हैं पैसे खर्च करना नहीं चाहते, उनको समझ नहीं है ना इसलिए। अच्छा फिर इसी तरह कुआं कुआं खोदवा देना, जैसे उस्मान गनी रजी अल्लाह उन्होंने बेरे रूमा का कुआं जो है वो जब मदीना हिजरत करके गए तो मीठे पानी का कुआं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। इसी तरह अच्छी किताबें जो हैं वो, या ये कि किसी को कोई अच्छी बात बता देना, या जैसे विरासत का कानून अब आम नहीं है उसको आप जारी करते हैं कि नहीं, मतलब ये कुरान का हुक्म अब खत्म हो रहा है इसको मैं जारी करूं, या आज के दौर में आप देखें कि कोई सुन्नत है जो अल्लाह के नबी की अब वो खत्म होती जा रही है, लोग उससे मुतारिफ नहीं है, जैसे मिक्सिंग मिक्सिंग कितनी ज्यादा अब आम है, और अगर जो मिक्सिंग इतनी आम है कि अगर आप इसके खिलाफ बात करती हैं कि ये नहीं करनी चाहिए तो लोग घूर कर आपको देखते हैं, हैरत से देखते हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। तो जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अहकाम हैं उनको जो है वो आम करना, उनको जिंदा करना, उनको फैलाना। तो आसार के एक मानी क्या है, अमाल के समरात और नताएज, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, अब आपको देखना है कि आप क्या कर रही है। दूसरे आसार के मानी है कदमों के निशान, जैसे नेकी या बदी के लिए कोई सफर करना, मसलन कोई किसी को कत्ल करने के लिए कदम बढ़ाता है, कोई गीबत और चुगली करने के लिए, कोई ज्यादती करने के लिए, झूठी गवाही के लिए और फसाद डालने के लिए, तो एक कदम है जो बदी के रास्ते में उठाए जाते हैं शैतान बनकर, तो ये कदमों के निशान भी लिखे जाते हैं, वो अमल तो लिखा जाएगा कदमों के निशान भी। दूसरा है नेकी के लिए कदम उठाना, आप किसी की इयादत कर रही हैं, किसी की ताजियत करने जा रही हैं, आप दो लोगों में सुलह करवा रही हैं, आप रूठों को मना रही हैं, आप दूसरों को माफ कर रही हैं, आप जकात देने जा रही हैं, आप जो है वो कुरान की क्लास के लिए निकल रही हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, आप राइड दे रही हैं, आप कुछ भी कर रही हैं, कदमों के निशान। और हदीस में आपको सुनाती हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी के करीब कुछ जगह खाली थी, तो बनू सलमा ये कबीले का नाम है, उन्होंने उधर मुंतकिल होने का इरादा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद के करीब मुंतकिल होने से रोक दिया और फरमाया, दियारकुम तुकतब आसारकुम, दो मर्तबा आपने कहा तुम्हारे घर अगरचे दूर हैं लेकिन वहीं रहो, जितने कदम तुम चलकर आते हो वो लिखे जाते हैं। इसको सही मुस्लिम ने रवायत किया है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जो है वो कदमों के निशान भी लिखे जाते हैं। तो जब भी आप घर से निकलें, जब कोई कदम उठाएं, तो आप जरूर सोचें कि ये नेकी के रास्ते में है या के बदी के रास्ते में। और फिर इस वक्त सबसे बड़ा सदका जारिया क्या है कि आप जो हैं वो अपने चंद फुट के इंसान पर कुरान और सुन्नत को नाफिज करें, अपने वालदैन के लिए सदका जारिया बने, और जो कुछ आप सीख रही हैं आप अभी से फैसला कर लें, आप ये तय कर लें कि ये पैगाम और ये इल्म इसको मैंने फैलाना है। मांगते फिरते हैं अगयार से मट्टी के चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। तो आपको क्या करना है, आप अपने आप को पेश करें कि मुझे जो है जैसे दारुल ईमान जो है कुरान और सुन्नत को फैलाना चाहता है, इल्म को आम करना चाहता है, कुरान और सुन्नत के जरिए तज़किया करना चाहता है, इंफरादी तौर पर अपना भी और दूसरों का भी। और फिर ये इल्म की रोशनी जब फैलेगी तो कुफर और शिर्क के और शैतानियत के अंधेरे जो है वो छट जाएंगे। तो आप भी जो कुछ कर सकती हैं आप अपने आप को इसके लिए पेश करें। यूथ की क्लासेस हैं, खवातीन की हैं, बच्चों की ब्राइट स्टार के नाम से हैं, इंग्लिश में हैं, उर्दू में हैं, जैसे फिर कंप्यूटर है, वेबसाइट पे जैसे मसलन आपके जो लेक्चर होते हैं और फिर आप नहीं सुन पाती, बाद में आप सुनती हैं वेबसाइट पे, तो आप जैसी बहनें हैं जो उसकी ऑडिटिंग करती हैं, फिर उसको कंपाइल करके फिर वेबसाइट पे डालती हैं। तो ये क्या है, ये सत्य जा रही है ना, किसी ने लैपटॉप लिया, किसी ने माइक, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल में, कोई सबक सुनता है, कोई पेपर बनाता है, कोई पेपर चेक करता है, सब वॉलंटियर रजाकाराना काम कर रहे हैं। क्यों, सबका जारिया बन रहा है। इसी तरह सीरत क्लास चल रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जा रही है, और उसमें सीरा की टीम है जो कि वॉलंटियर कर रही है, होमवर्क चेक करती है, आपको चेक करके भेजती है। इसी तरह आप देखिए आपका सूरत नूर और अहज़ाब का क्विज हो रहा है, इसमें अब क्विज टीम बन गई है जो आपकी तैयारी करवा रही है। तो ये सब क्या है, अब आप देखेंगे कोई आसान तो नहीं है ना तैयारी करवाना और ये सारे काम करना अपनी सारी मसरूफियात के साथ। लेकिन जब पता हो कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मगफरत मिलने वाली है, अजरे करीम मिलने वाला है, मेरा रब राजी होगा, तो आपके अंदर एक स्ट्रांग कमिटमेंट पैदा होती है, फिर आपके अंदर एक शौक पैदा होता है, फिर आप सोचते हैं, अभी आपने पीछे जो सूरत फातिर की आयात पढ़ी थी कि मुझे जो है वो साबिकूनुल अव्वलून में से बनना है, यानी फिर एंडलेस एफर्ट्स आप करते हैं, परफेक्शन चाहते हैं, आप नेकी के काम में आगे बढ़ते हैं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज्निल्लाह, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में शामिल कर ले, हम सबको सबकत ले जाने वालों में, नेकियां करने वालों में जो है वो शामिल कर ले। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शयइन अहसैनाहू फी इमाम मुबीन। लोगो तुम अच्छे काम कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उसको नोट करते जा रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते नोट कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हर चीज को एक खुली किताब में दर्ज कर रहा है, लोहे महफूज में, आप नामा अमाल भी कह सकती हैं, नामा अमाल तैयार हो रहे हैं, किरामन कातिबीन तैयार कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, फिर एक वक्त आएगा कि उस वक्त जो है वो हिसाब किताब जो है वो किया जाएगा। और ये आयात जो है बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ी ही अहम है, और डरा भी रही हैं और मुतवज्जो भी कर रही हैं कि सोचें कि मैंने अब तक की जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, मैं अपने साथ क्या ले जाने वाली हूँ। आपके पास जो है वो बहुत ही खूबसूरत कपड़े हैं, बेशुमार कपड़े हैं। मैंने अपनी एक दोस्त के घर में, उसने मुझे अपना बेडरूम जब दिखाया तो यानी पूरा एक कमरा जितना एक बड़ा कमरा होता है, मास्टर बेडरूम, उतनी उसकी कपड़ों की अलमारी थी, और आमतौर पे क्या होता है कि आप आगे बढ़ते हैं, एक हैंगर को उठाते हैं, फिर कपड़े निकालते हैं, वो क्या थी, वो जैसे पूरी मूविंग थी कि वो हिला रही थी और सारे कपड़े उसके सामने आगे आगे आ रहे थे ना। तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना कि तरह तरह के कपड़े हैं और इस्त्री हुई भी है, क्रीज बनी हुई है, दुपट्टे भी हैं, डिजाइन भी है, फैशन भी है, मोती सितारे, गर्मी सर्दी, शादी के मौके आगे, और फिर ये कि वो घूम कर आपके सामने आ रहे हैं ना, और आप फिर चूज करते हैं कि मुझे कौन सा लेना है। फिर आपकी चूड़ियां हैं, वो पूरी अलमारी है ना, आप अपनी पसंद के मुताबिक वो पहनते हैं कि मैचिंग करके। फिर जूते हैं तो वो तरह तरह के हैं, फिर आपके जिलबाब हैं, और फिर जो है वो आपके पास गाड़ियां हैं, और आपके पास जेवर हैं, बर्तन हैं, क्या क्या है आपके पास ना। लेकिन आप याद रखें कि ये डॉलर, ये कपड़े, ये घर, ये गाड़ी, ये बैंक बैलेंस, ये फैक्ट्री, ये जायदाद, जितना भी ज्यादा आपके नाम क्यों ना हो, ये सारा दुनिया में रह जाएगा, तो साथ क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंसान के अमाल। तो अल्लाह ताला हमें हुस्ने अमल करने वाला बनाए और हम सबसे राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।